हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परापर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनेक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको गीता वाटिका गोरखपुर में श्री गिरिराज जी की भावमयी तरहटी में पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रीतिरसावतार महाभाव वारिधि निमग्न पूज्य श्री राधा बाबा के जन्म शताब्दी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु कलिपावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरित्र के कथन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कली के कुटिल जीवों को सहज रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही कली काल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप से प्रकट हुए। छप्पे छंद की संक्षिप्त व्याख्या का श्रवण भी कर चुके हैं एवं गोस्वामी तुलसीदास जी के आविर्भाव से लेकर भगवती जगदम्बा पार्वती की कृपा भगवान शिव की कृपा सदगुरु की प्राप्ति श्री अवधवास फिर शुकर क्षेत्र सरयू और घाघरा के संगम क्षेत्र में निवास और पुनः काशीवास शेष सनातन जी का चरणाश्रय प्राप्त करके शिक्षा ग्रहण करना और कुछ काल पश्चात शेष सनातन जी को अपने सुयोग्य शिष्य को सौंप कर श्री नरहरदास जी का चित्रकूट प्रस्थान, यही तुलसीदास जी को अपने गुरुदेव का अंतिम दर्शन हुआ। इसके बाद पुनः मिलन का प्रसंग नहीं है। गोस्वामी जी ने जब शेष सनातन जी की पाठशाला में अध्ययन किया, अभी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के वेश में निवास करते हुए विद्याध्ययन ही कर रहे थे, इसी बीच में एक घटना घट गई। शेष सनातन जी की पाठशाला के गुरुकुल के एक विद्यार्थी के ऊपर किसी ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि काशी मुक्ति पूरी है, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। ये घटना काशी की है और वो भी गुरुकुल में ब्रह्म पिशाच ब्रह्म राक्षस उसका उपद्रव और किसी बटुक ब्रह्मचारी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव, ये बात असंगत सी लगती है। देखिए विस्तृत व्याख्यान का अवसर नहीं है। काशी में दो क्षेत्र हैं, एक तो केदार क्षेत्र है, केदार खंड है, और एक काशी खंड विश्वेश्वर खंड काशी खंड उसी को कहते हैं। एक जगह सद्यह मुक्ति है तो दूसरी जगह क्रम मुक्ति है। चिंतामणि महागणपति ने भगवान केदारनाथ से वरदान प्राप्त किया है, काशी में कोई भी जीव कीट पतंग ही क्यों न हो, मरे तो उसका भवबंधन छूट जाए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शंकर वरदान देना ही चाहते थे कि देवता हाहाकार कर उठे, महाराज अनर्थ हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। यमराज ने हाहाकार किया, तब फिर उस वर को एक क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित कर दिया गया, जिसे केदारखंड कहते हैं। ये 80 से शुरू होता है, हाँ बदेनी, और वहां से लेकर के केदार घाट तक थोड़ा सा और आगे तक केदारखंड की सीमा है। तो केदारखंड में मरने वालों को सद्य मोक्ष की प्राप्ति होती। एक और वरदान प्रभु श्री राम ने भगवान शिव को दिया है, उसका भी प्रमाण ग्रंथों में प्राप्त होता। यहां इधर मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभ ध्वज, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभ ध्वज, हजारों मन्वंतरों तक वृषभ ध्वज भगवान शिव ने जहां वर्तमान में काशीपुरी है, यही भगवान शिव ने विराजमान होकर के हजारों मन्वंतरों तक षडक्षर श्री राम तारक मंत्र राज का जप किया और उससे प्रसन्न होकर भगवान श्री राम उनके आराध्य उपास्य इष्ट देव वे प्रकट हो गए और कहा कि भोले बाबा हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी इस अत्यंत निष्काम उपासना से, वरदान मांगो। शंकर जी के हृदय में इतनी करुणा उमड़ी, बोले महाराज इन माया की चक्की में पिसते हुए जीवों को देख करके हमें बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, ये आपसे विमुख होकर के संस्कृति के चक्र में पड़े हुए हैं, अविद्या जनित क्लेश को भोग रहे हैं, सो आप कृपा करके इन्हें मुक्त कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या मांग रहे हो महादेव जी, सब खेल खत्म हो जाएगा, सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तो सृष्टि रहेगी ही नहीं, हमारे खेल को बिगाड़ो मत, पर आपकी इस उपासना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, जिस क्षेत्र में रह करके आपने जप किया है हजारों मन्वंतरों तक यह मुक्ति क्षेत्र हो जाएगा, और जिस मूर्षु प्राणी के दक्षिण करण में आप श्री राम तारक का उपदेश कर देंगे वह सद्यह मुक्त हो जाएगा, आप इस पवित्र क्षेत्र में अविचल भाव से विराजें। शंकर जी ने कहा महाराज हम यहां अखंड अविचल भाव से विराजमान तो रह सकते हैं पर एक शर्त है, क्या? ले आपको भी अखंड अविचल भाव से यहां विराजमान रहना पड़ेगा, आप भी वचन दीजिए, क्योंकि आपसे दूर में रहने आप रहो तो हमेशा रह जाऊंगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब हम यहां से छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, यहां के कणकण में हमारी सन्निधि रहेगी। ऐसा कहकर के प्रभु श्री राम अविमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। आज भी काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो वहां के पंडा पुजारी लोग कहते विश्वनाथ जी के गुरु, वहां कहते हैं पंडा पुजारी के अविमुक्तेश्वर जो हैं विश्वनाथ जी के गुरु हैं, इनका पूजन न करो इनका दर्शन न करो तो विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन का कोई फल नहीं। हमको भी हम भी बार बार जाकर सुनते ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं, तब सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में ये कथा पढ़ने को मिली, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजः, तो इसमें ये समझ में आया कि ये अविमुक्तेश्वर के रूप में साक्षात श्री रघुनाथ जी ही विराजमान, इसलिए जगत गुरु भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और जगत गुरु के भी गुरु जगत गुरु के भी गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री राम जी श्री कृष्ण ये जगत गुरु है। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, मानसी में गोस्वामी गुरु जगत गुरुम च शाश्वतम, श्री राम जी शाश्वत जगत गुरु हैं, आज भी वे अभिमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान हैं। एक ग्रंथ है वीर मित्रोदय, देखा होगा आपने, दास को एक बार ग्रंथ के कतिपय अंश को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह एक सनातन धर्म का अनुपम ग्रंथ है। अनुपम हम इसलिए कह रहे हैं कि सनातन धर्म का यत्र तत्र बिखरा हुआ जो विषय है उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है, संकलित किया गया है, इसलिए यह अपने आप में अनुपम है। इसके 22 प्रकाश हैं, जैसे कहीं स्कंद कहा जाता है, कहीं खंड कहा जाता है, कहीं कांड कहा जाता है, ऐसे ही उन विद्वान ने अपने ग्रंथ के जो अलग अलग भाग हैं उनको प्रकाश संज्ञा दी है। धर्म प्रकाश, अर्थ प्रकाश, तीर्थ प्रकाश, राजनीति प्रकाश, दुर्ग प्रकाश, सारे संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक चपंडी कृत्य तक, तीर्थ प्रकाश में सारे तीर्थों की चर्चा है। देखने योग्य काशी महात्म्य है। पूजा प्रकाश में सबकी पूजा का अनुरूपण है। और ज्योतिष का भी, न्याय का भी, व्याकरण का भी, हम कहते हैं कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया। ओरछा के नरेश श्री वीर सिंह जी देव थे, बड़े वीर थे, जैसा नाम था वैसा ही उनका गुण था, और जितने बड़े वीर थे वैसे ही वे विलक्षण कोटि के विद्वान थे। न्याय व्याकरण आदि विविध धर्म शास्त्रों के वे विद्वान थे और संगीत कला के भी वे मर्मज्ञ थे। वीर सिंह जी के शासन काल को बुंदेलखंड का स्वर्ण युग कहकर के इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की है। बड़े वीर थे और बड़े चतुर, बड़े कुशल बुद्धिमान थे। इतने बुद्धिमान थे वीर सिंह जी देव, इतने बुद्धिमान थे कि वो मुगलों के शासन का काल था, सम्राट अकबर का शासन काल था, और अकबर के शासन काल के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। जिन लोगों ने इतिहास को देखा है वे जानते हैं कि जहांगीर ने एक बार अकबर के शासन काल में ही सत्ता के लिए विद्रोह किया था। सिंहासन हथियाने के लिए जहांगीर ने अपने बाप अकबर से विद्रोह किया था। उस समय अब्दुल रहीम खान खाना, जो आगे रहीम जी के नाम से विख्यात हुए, इन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक जहांगीर का दमन किया था। और अकबर इतना रुष्ट था जहांगीर के ऊपर कि वो अपने पुत्र को ही समाप्त करना चाहता था। जहांगीर का प्राण बचाना मुश्किल हो गया और अकबर उस समय इतना बलवान था, उसके हाथ में सत्ता थी, सारे हिंदू राजा प्रायः उसके अधीनस्थ थे। जहांगीर ने अनेक जगह शरण की, गुहार की कि मुझे आश्रय मिले, पर जहांगीर को प्रश्रय देने का मतलब है अकबर से विरोध। जहांगीर प्राण बचाता हुआ ओरछा आया और उसने वीर सिंह जी देव से कहा कि आप सूर्यवंशी रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हमने सुना है राम जी के वंश में कोई ऐसा हुआ नहीं सूर्य वंश में जो शरणागत का त्याग करे, मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, आप मेरे धर्मतया पिता के तुल्य हैं। वीर सिंह ने कहा कि तुम निर्भय हो जाओ, महल में रख लिया उसको, जहांगीर को महल में रख लिया, और जहां जहांगीर संकट काल में रहा वहां आज भी ओरछा में जो किले लोग देखने जाते हैं तो जहांगीर महल है, कहते यही जहांगीर रहा था, जहांगीर वहां रखा। और जब अकबर को यह ज्ञात हुआ कि ओरछा नरेश ने जहांगीर को आश्रय दिया है तो वह क्रोध में तिलमिला उठा और बड़ी भारी सेना लेकर, यद्यपि उसमें अकबर नहीं आया था, उसने सेनापति भेजा, सेना भेजी और सारा ओरछा नगर घिर गया। या तो जहांगीर को मेरे सुपुर्द करो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कहां इनकी मुट्ठी भर सोना सेना और कहां इतना विशाल शत्रु सेना का फैलाव, चारों ओर से नगर घिर गया है, क्या किया जाए। हमने यहां तक सुना है कि जहांगीर ने कहा महाराज युद्ध करने पर भी विजय संभव नहीं है क्योंकि आप बहुत थोड़े हैं, इसलिए आपने इतने दिन तक हमें सहारा दिया है, हमको सौंप दो, जो होना होगा सो होगा, पर आप ओरछा की प्रजा को संकट से बचा लीजिए। इन्होंने कहा ये तो संभव नहीं, शरणागत कहूं जे तज निज नहित अनुमान, तेनर पावर पाप मैं इतने ही विलोकत हान, शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, तुम निश्चिंत रहो, एक भी ओरछा का सिपाही सैनिक मारा नहीं जाएगा और सेना भाग खड़ी होगी। अब ये आश्चर्य की बात थी, कैसे भाग खड़ी होगी, इतने बुद्धिमान थे वीर सिंह जू देव कि चारों ओर नगर के सेना पड़ी हुई थी, हजारों भैंसें बुलाई, अहीरों की भैंसें थीं नगर में, उन भैंसों को बुलाया, उन भैंसों का मूल्य अहीरों को दे दिया और उन भैंसों के सींग में बड़े बड़े डंडा बांधे, उन डंडों में कपड़ा लपेटा, ज्वलनशील पदार्थ लपेटा, जो भी कहो केरोसिन कहो जो भी कहो जलने वाला तेल आदि लगाया और दूसरे दिन युद्ध होना है। रात को ही उन हजारों भैंसों को एक ऐसा जगह बना के रखी थी जहां से उनको निकाला जा सके, भैंसों को निकाल दिया और रात का समय था, बिजली का जमाना तो था नहीं, उन भैंसों के सींगों पर लगे हुए जो डंडा थे उनमें एक साथ आग लगा दी। अब वो भैंस तो उतनी दिखाई नहीं पड़े, भैंस जो है वो जो आग लगी तो वो बिचकी, अब उन्होंने कूदना शुरू किया भैंसों ने, सिपाही सैनिक उतने आश्वस्त थे कि रात में कुछ होने वाला है नहीं, भैंसों की भगदड़ मच गई और आग उनके जल रही थी, टेंट तंबू गाड़ रखे थे उन सब में आग लग गई, बड़ा भारी बारूद था, जिस तरफ बारूद रखा था तोप के बड़ी बड़ी तोपें रखी थी उसी ओर भैंसों को योजनाबद्ध तरीके से छोड़ा गया। अब वो सारी तोपों में विस्फोट होने लग गया सारा बारूद, अब इतनी भयंकर आग लगी कि अकबर की बहुत बड़ी सेना जलकर खाक हो गई और प्राण बचाकर लोग भागे, एक भी सैनिक मारा नहीं गया, भैंसे तो वीरगति को गई लेकिन इतने विस्फोट हुए और इतने घबरा गए लोग कि यह जान ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या, इतने घबरा गए, भाग गए, बोले पता नहीं क्या देवी उत्पात हुई, आग लग गई। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं जो पीछे आ रही हैं, वो अनेक प्रेमियों को लांघ कर आगे न आवे। पीछे बहुत जगह खाली है, आगे बैठना हो तो पहले आगे आओ। नारायण। इस प्रकार से बची खुची सेना को फिर खदेड़ दिया लोगों ने। फिर वो कहा तो उनका हौसला पस्त हो गया। और इस घटना के कुछ समय बाद काबुल में युद्ध छिड़ गया, उसमें बीरबल मारा गया। और बीरबल के मरने के बाद अकबर इतना दुखी हो गया, कुछ समय बाद अकबर की भी मृत्यु हो गई। और उस समय वीर सिंहजू देव ने ही जहांगीर को गद्दी पर बैठने का अवसर दिया। वे यदि चाहते तो जहांगीर गद्दी पर नहीं बैठ सकते, इतने वीर थे। तो बड़े वीर थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन वीर सिंहजू देव ने मथुरा में केशव देव जी के मंदिर का निर्माण किया था। उस जमाने में 1100 अरब, सुना जाता है ऐसा, 1100 अरब मुद्राएं खर्च हुई थी। एक हजार से अधिक स्तंभों पर बना हुआ केशव देव जी का मंदिर था। मणियों के दीप प्रज्वलित हुआ करते थे। वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ में उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है, ऐतिहासिक रूप से कैसा मंदिर था। बाद में दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब ने केशव देव जी के मंदिर को उजाड़ा, नष्ट किया और वहां मस्जिद का निर्माण किया, ईदगाह का। आज भी कृष्ण जन्मभूमि का प्रधान मंदिर वही था। और मंदिर निर्माण करके वीर सिंहजू देव ने 81 मन स्वर्ण का दान ब्रजवासी ब्राह्मणों को किया था। कितना? 81 मन। और वीर सिंह के पिता मधुकर शाह ने भी 81 मन सोने का दान किया था। इतने बड़े उदार धर्मात्मा थे। प्रसंगवश ये बात आ गई है हमारे वाणी से। ऐसे थे वीर सिंह। उन वीर सिंह जी के राजगुरु पद पर प्रतिष्ठित थे पंडित मिश्र महर्षि। पहले ओरछा के राजगुरु पंडित सुमोखन शुक्ल थे, बाद में उनके पुत्र श्री हरिराम जी व्यास राजगुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए। किंतु हरिराम जी व्यास के वृंदावन आ जाने के बाद, विरक्त हो जाने के बाद, फिर राजगुरु पद खाली हो गया। तो फिर पंडित मित्र मिश्र, मिश्र थे वो, बड़े विद्वान थे। उनके पिताजी को राजगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया और बाद में राजगुरु पद पर मित्र महर्षि हुए। इनका नाम तो पंडित मित्र मिश्र था, काशी में अध्ययन किया था, किंतु इतने बड़े विद्वान थे कि काशी के विद्वानों ने एकत्रित होकर के इनको महर्षि की उपाधि दी थी। कि व्यास जी के महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के बाद इतना बड़ा विद्वान इनके अतिरिक्त और अब तक कोई नहीं हुआ, इसलिए उनको महर्षि व्यास की पदवी दी गई, मित्र महर्षि। वे मित्र महर्षि बड़े विद्वान, बड़े धर्मात्मा, सदाचारी थे। श्री वीर सिंहजू देव ने कहा, महाराज मुगल काल है, हिंदू राजा परस्पर असंगठित हैं, विघटित हैं, और आगे चलकर धर्म ग्रंथों का लोप हो जाएगा, संस्कृत भाषा भी विलुप्त प्राय होने लग जाएगी, अनेक ग्रंथ मलेच्छों ने जला डाले हैं और जला दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जाए जहां सनातन धर्म की सारी जानकारी एक जगह हो। तब वीर सिंह जी की आज्ञा से मित्र महर्षि ने ग्रंथ की रचना का आरंभ किया और उस ग्रंथ का नाम रखा वीर मित्रोदय। वीर सिंह जी ने आज्ञा दिया और मित्र महर्षि ने श्रम किया, उन दोनों के सहयोग से इस ग्रंथ का उदय हुआ, इसलिए ग्रंथ का नामकरण किया गया वीर मित्रोदय। ये महाभारत से भी अधिक विशाल ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 से ऊपर श्लोक कहे जाते हैं और इसमें 1,00,000 से ऊपर श्लोक हैं, करीब 1,25,000-1,50,000 के करीब श्लोक हैं। जगह जगह शास्त्रार्थ का विषय भी है, बहुत विशाल ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में ही अभी है, उसका कोई रूपांतर भाषांतर नहीं हुआ, इसलिए सर्वजन साधारण के लिए उपयोगी नहीं है, पर है बहुत अच्छा ग्रंथ। उस ग्रंथ का हमें स्मरण इसलिए आ गया कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, इन दोनों श्रुति वचनों के ऊपर बहुत विस्तृत शास्त्रार्थ लिखा है मित्र महर्षि ने। वे कहते हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, वेद वचन है ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। आद्य शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। गंगा सागर की बड़ी महिमा है, गंगा सागर जाता है, स्नान करता है, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करता है, दान भी करता है, किंतु यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं केवल हमारा मत नहीं है, सर्व मतेन। इस मत में किसी का कोई विरोध नहीं है, ज्ञान विहीन सर्व मतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। शंकराचार्य उसे स्वरूप ज्ञान कहते हैं, मैं ब्रह्मातिरिक्त नहीं हूं, इस ज्ञान को स्वरूप ज्ञान शंकराचार्य मानते हैं। ब्रह्म से अनतिरिक्त हूं, यही भाव है कि नहीं? क्योंकि माया और जीव ये दोनों ही कल्पित हैं, शंकराचार्य जी के सिद्धांत में। वैष्णवाचार्यों ने इस सिद्धांत को नहीं माना, इसलिए नहीं माना, यह भी एक बात प्रसंगवश कह दें, ये सिद्धांत इसलिए नहीं माना कि इस सिद्धांत को मानने के बाद भगवान की उपासना संभव नहीं है। आप लोग कहेंगे कैसे उपासना संभव नहीं है, हम कोई दुराग्रह नहीं कर रहे हैं और अपने विचार आप पर थोप भी नहीं रहे हैं, आप ठीक से श्रवण करें, आपको उचित लगे तो आप मान लें। वैष्णवाचार्यों ने यह भाव दिया है, क्या भाव दिया है? देखो भगवान की भक्ति में 3 चीजें जरूरी हैं, भगवान की भक्ति में 3 चीजें आवश्यक हैं। कौन कौन? एक तो उपास्य, दूसरा उपासक, और तीसरी उपासना सामग्री। कौन कौन चीजें? एक उपास्य, दूसरा उपासक और तीसरा उपासना की सामग्री, इन 3 की अनिवार्य आवश्यकता है। उपास्य कौन है?
आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयः तद्धाम वृंदावनम।
हमारे वृंदावन के आचार्य कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयः। ब्रजे सतनय ब्रजराज कुमार, अवध राज कुमार, यही आराध्य। ब्रजराज अवधराज आराध्य। उपास्य का निश्चय हो गया, उपास्य भगवान है राम कृष्ण हरि उपास्य। उपासक कौन है? बोले उपासक जीव है। जीव का स्वरूप क्या है? उपासक। इसका मतलब स्वामी जी ये है कि जो उपासना में नहीं लगा है उसका जीवत्व व्यर्थ है। जीवत्व की सार्थकता इसी में है, वह उपासना में लगे। हमारे यहाँ जब कृपा पूर्वक गुरुजन मंत्रार्थ का उपदेश करते हैं तो वे कहते हैं मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। मकार श्री राम मंत्र में जो मकार पद है उसका वाचक जीव है, वाच्य उसका जीव है, और जीव का स्वरूप क्या है? वैष्णवों के सिद्धांत में जीव का स्वरूप क्या है? कहते सकल विधि कैंकर्य निपुण है। अपने आराध्य उपास्य भगवान के सकल विधि कैंकर्य में जो निपुण हो, सेवा में लगा हुआ हो, ये सकल विधि कैंकर्य निपुण का स्वरूप क्या है? बोले सकल विधि कैंकर्य निपुण का स्वरूप है
सवई मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृतौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् घ्राणम् च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति।
यही जीव का स्वरूप है, इसी में उसकी सार्थकता है। अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान के चरणों में निवेदित कर सभी मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि, वचांसि में बहुवचन है, वचह वचसी वचांसि अर्थात अपनी परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, चारों प्रकार की वाणियों को भगवान में ही समर्पित कर दो। हाथ से भगवान की अष्टयाम सेवा करे, मंदिर में झाड़ू लगावे, चंदन उतारे, तुलसी पुष्प का चयन करे, ठाकुर जी के लिए रसोई बनावे, आदि में सब आगे अष्टयाम सेवा आगे। कानों से कथा सुने, नाक से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई पुष्प तुलसी की सुगंध ले, चरण कमल मकरंद की दिव्य सुगंध का अनुभव करे, जिह्वा से प्रसाद रस का स्वाद ले। बाबूजी जगह दे, जिह्वा से प्रसाद रस का स्वाद ले और बोले तद्भृत्य गात्र स्पर्शेन संगमम। मंदिर में भगवत विग्रह का आलिंगन संभव नहीं है क्योंकि मर्यादित नहीं है, तब आलिंगन कैसे, शरीर को धन्य कैसे करें? बोले तस्मिन तज्जने भेदा भाव, भगवान और भगवान की जन्म में भेद है, इसलिए भक्त का आलिंगन करके भगवत आलिंगन के सुख को प्राप्त करें। भक्त का आलिंगन हो गया साक्षात ठाकुर जी का। सकल विधि कैंकर्य निपुण, यही जीव का स्वरूप। तो उपास्य श्री ठाकुर जी उपासक जीव, अब ये प्रकृति क्या है? देह भी तो प्रकृति है कि नहीं?